हम लोग तो तवजत्रिक नहीं करते, तवजत्रिक माने गाना बजाना नाचना, ये संतों के लिए सन्यासियों के लिए उचित नहीं है। ये तो कमाने वाले व्यवसाय करने वाले नाचते हैं गाते हैं लोगों का मनोरंजन करके पैसा लेकर के जीवन का निर्वाह करते हैं, ये संतों को नहीं करते। तो तुम सन्यासियों का क्या ऐसा नाचते हो गाते हो, ये ऐसा तो उचित नहीं। क्यों ऐसा करते हो, रोते क्यों हो कीर्तन करते के समय में? उन्होंने कहा सरल शब्दों में, मैं बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हूं। हमारे गुरु जी ने देखा जैसे इसको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। देखा जाए इसके समान और कोई मूर्ख नहीं, इसको कुछ आता जाता है, इसलिए मेरे लिए आदेश दिया। देखो ये एक श्लोक याद कर लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल एकमात्र, हरि नाम ही और हरि नाम ही हमारे लिए गति है, गति है, गति है, और कोई गति नहीं है, नहीं है और नहीं। सब में तीन तीन बार बतला है, पत्थर के रेखा भर ही मिट जाए, सूर्य का पूर्व में उगना ना हो करके पश्चिम में वो उग सके, भले हम सिर के बल चलें, पैर के बल हम खाएं पैर से, ये सब कुछ हो सकता है। भले ही अग्नि के द्वारा बर्फ निकल जाए, भले ही अंधकार दूर हो जाए, सूर्य को निकल जाए अंधकार, भले ही आकाश में पुष्प खिल जाए ये भी मान लेंगे, भले ही जमीन की रेती को पीसने से तेल आ जाए, पानी को मथने से घी भले ही निकल जाए, किंतु भगवान नाम के बिना गति नहीं है, गति नहीं है और नहीं है। समस्त उपनिषदों में इसको कहा, केवल एक ही उपनिषद में नहीं, 1008 उपनिषद है, मूल उपनिषदों में ऐसा कहा गया। इसलिए कलिसंतान उपनिषद आदि का लाख कोटि वर्ष पुराना, लाख कोटि वर्ष नहीं कहेंगे तो आदि हो जाता है, वेद अनादि है, उसमें लिखा गया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। चैतन्य महाप्रभु का ने वेदों से इसको आविष्कार किया, कहे समस्त नामों से शक्ति इस नाम में, ये महामंत्र है, केवल मंत्र नहीं है, इसका नाम ही जप करना है, इसी के लिए हरे नाम अयव केवलम कलौ नास्ते, और दूसरा महामंत्र इत्यादि नहीं है। बहुत से लोग सब मंत्रों को लेते हैं किंतु सबसे श्रेष्ठ यही मंत्र है, इतना शक्तिशाली है, जूठे मुख भी करें, सोते हुए करें, चलते हुए करें, अपने काम को करते हुए करें, चित्त अशुद्ध होने पर भी करें, टट्टी हो रही है, पैखाना निकल रहा है, तभी हरे कृष्ण कह सकते हैं, उसमें कोई भी बात नहीं है। यहाँ तक कि एक तेली है, तेली था, वो हरि नाम करने को समय नहीं मिलता था, दिन रात कान वो कोल्हू चलाता था और बैल को हाथ हाथ था, चल 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 ऐसा कहता था। नारायण जी का यह जीवन तो तुम्हारा देखा गया, तुम एक बार की हरि नाम नहीं कर सकता, मुझे तो समय नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, टट्टी जाने के समय में क्या करता है, उस समय कभी ही चलेगा तो हाँ चलेगा। बस एक दिन उठाया, रात में टट्टी लगी और टट्टी जाकर के जब टट्टी करने लगा तो राम राम करने लग गया। इतने में हनुमान जी तो जहां नाम होगा जरूर रहेंगे, बस हनुमान जी आए और 1 लाख मारा, बड़े जोश से खेच कर रावण तो ढिमिलिया खा गया, मुख में मट्टी ले लिया, जिनके मारने से 1 लाख मारने से गिर गया, और मेघनाथ जैसे वीर लोग सुदुभ भूल करके मट्टी में लौटने लगे, और फिर हनुमान के सामने जाने में डरते हैं, उस तेली को कुछ भी नहीं हुआ, ओ राम 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 कहता रहा। हनुमान जी बड़ी विचित्र बात, ये क्या हो गई, इतने जोश मारा रावण तो इतने में तो गिर गया, और कुंभकर्ण जैसा आदमी भी मुख में मट्टी भर लिया और इसको कुछ भी नहीं हुआ, भाई ये बात क्या है। इसके बाद में विचार करते करते चिंता करते करते उनको कोई मालूम नहीं हो रही क्यों ऐसा हुआ, और वो आराम से कहता हुआ फिर चला गया। ये बड़े चिंतित होकर के बस शाम को रात को रामचंद्र जी के राज दरबार में उपस्थित हुए, आज उन्हीं से पूछूंगा। इधर रामचंद्र जी पलंग पर बैठे हुए ऊह आह कर रहे, मानो उनको खूब दर्द हो रहा है। जब वहां पर रामचंद्र जी के सामने गए तो पूछने वाले थे तो वो अपना प्रश्न तो भूल गए, प्रभु आपको ये कष्ट कैसे हो रहा जो ऊह आह कर रहे हैं, क्या होगा आपको? कहिए तुम तो अच्छा आदमी है, इधर लात जमाई हमारे पीठ पर और इधर कहता जी आपको क्या हो गया। अरे हमने कब लात जमाई, कभी ये हो सकता है प्रभु, आप मेरे आराध्य देव हैं, मैं ऐसा कभी गलती नहीं कर सकता। अरे जब वो तेरी नाम कर रहा था टट्टी करते समय, उसने तुमने जो लात जमाई उसमें, तो मैं राम राम कहते ही मैं उसके शरीर में प्रवेश करके मैं ही उसके अंदर में चला गया, और तुमने जो लात जमाई वो उसको ना लग करके हमें लगी। अजय अब मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिस समय जैसे भी कोई नाम भगवान नाम करता है ने? उसमें भगवान जरूर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम और नामी अभिन्न है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को यही बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति हो बहुत दुराचारी हो, तो आपने तो कोई दुराचार किया नहीं, किंतु यदि दुराचारी भी व्यक्ति हो, आज इसी कथा के माध्यम से मैं इस बात को वेदों के लिए जो परम गुह्य चीज है मैं उसको मैं बतला रहा हूँ। वेदों का भी परम गुह्य ये भगवान नाम है। ओंकार जो है ना, ओंकार से गायत्री हुई, अ उ म, अकारण्य उच्यते कृष्ण, अ माने कृष्ण, ओकारण्य उच्यते राधा, ओकार से इसमें राधा जी है, और मकार जीव वाचक, हम लोग जो जीव हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो कृष्ण हम लोग हैं, हम लोग के लिए यह मौका। यदि यह मां अर्थात जीव राधा कृष्ण की यदि आराधना करें, उनका नाम करें, सहज रूप में ही हम लोग इसे ने? इसी तरह से उस गायत्री का भी अर्थ है श्रीमद भागवत सत्यम परमा धीमहि, गीता में भी वैसा ही आया है, गीता में गायत्री में धीमहि, जो आप लोग गायत्री जानते होंगे तो देखिए इसमें धीमहि। तो इसी तरह से ये गायत्री का अर्थ है श्रीमद भागवत, वेदों का शास्त्रों का अर्थ है मैं बतला रहा हूं। देखो भागवत में या तुलसी की रामायण या जितना भी रामायण है वाल्मीकि इत्यादि का सार नाम कृष्ण या राम नाम है। चलाता तो अजामी के लिए तो बीच में थोड़े से कभी प्रसंग याद आ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतलाता हूं, यदि फिर संग ऐसा होगा तो फिर कुछ बतलाने की चेष्टा। देखिए वाल्मीकि रामायण बन गया, 1,00,000 उसके श्लोक हुए, उसको विभाग करने के लिए हुआ, लोगों में झगड़ा होने लगा, असुर कहने लगे दैत्य जी हम लोग इसको लेंगे, और देवता लोग कहने लगे जैसे मैं लूंगा, और मनुष्य ने कहा जी मैं लूंगा, तीनों में विवाद होने लगा, मारामारी की नौबत, हाथापाई की नौबत आ गई, परस्पर छीनने लगे उससे उससे, बड़ा भाई विवाद आरंभ हुआ। इतने में शंकर जी आएगा, भाई किस लिए लड़ते हो, मैं तीनों को विभाग करके दे देता हूं। ठीक है, सबको बैठा दिया, विवाह करने लगे। देखो 1,00,000 में 101,000 उसमें 33,000 तीनों को विवाह करके दिए, 99,000 हो गया, अब 1,000 बच गया। अब 1,000 के विवाह करने के लिए 333 तो एक बच गया। अब एक में विवाह करना है, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो उन्होंने एक एक चरण दे दिया, अब रह गया 1 चरण, 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं तो 1 चरण होता है, तो 8 अक्षर में 2, 2, 2 दे दिया, अब बचा कितना है, 2 बच गया। कहिए भाई अब मैं तुम लोग बहुत परेशान मैंने किया, अब मैं 2 अपने ले लिया, वो 2 क्या है, राम। इस तरह से ये नाम समस्त शास्त्रों का ये सब सार, ये नाम राम और ये कृष्ण नाम है। उसमें भी 1,000 बार विष्णु का नाम यदि कोई ले तो 1 राम नाम के बराबर होता है, ये भी वेद का गोपनीय। राम रामे की रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम नाभिस्तुल्यम राम नाम और बराने, बड़ा पुराण में इसको कहा गया। 1,000 बार विष्णु सहस्त्र का नाम हम यदि पाठ करें या ले विष्णु 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 तो 1 राम नाम के बराबर हो जाएगा। 1 राम करें, 1 राम कहा और उसका हो गया 3। और 3 बार यदि विष्णु सहस्त्र नाम आता तो 3,000 बार यदि करें तो ये 3 राम नाम के बराबर हुआ। एक आवृत्त तो कृष्ण का नाम जग प्रजच्छति, एक बार कृष्ण नाम किया ना तो 3 राम नाम के बराबर हो जाएगा। क्यों, इसका कारण है राम और कृष्ण 2 नहीं है, एक पूर्ण जैसे चांद है, अष्टमी का चांद है, नौमी का चांद है, एक ही चांद है। एंगल ऑफ विजन से दृष्टि करने से, जिस हम दृष्टिकोण में जहां हम है वहां से देखने से चंद्र दिखता है अष्टमी नौमी, किंतु एक जब ऊपर में उठ जाएगा तो सब समय प्रतिदिन ही पूर्ण चांद है, किंतु पृथ्वी की छाया से ऐसा दिखता है, इसलिए चांद 2 नहीं हो जाएगा, इसलिए एकमकार द्वितीयकार चांद या पूर्णिमा का अलग नहीं होगा, केवल देखने वाले को प्रकाश उतना ही मिलेगा आंशिक रूप में, ठीक वैसे राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही तत्व है, दो है ही नहीं। किंतु कुछ रसेन उत्कृष्यते कृष्ण, रसम रूप में ऐसा रस स्थिति, कुछ कृष्ण तत्व में बारहो रस संपूर्ण रूप में प्रकाशित है और समस्त जितनी शक्तियां हैं कृष्ण में प्रकाशित है। रामचंद्र जी में मर्यादा के बंधन में बांध दिया राम को, मर्यादा के ऊपर कुछ नहीं करेंगे लीला। यदि जनकपुर की राजमहिलाएं राजकुमारी आ कहें सीता जी के साथ में विवाह कर दिया, हम भी आपसे विवाह करना चाहते, राम करेंगे? ये नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ मर्यादा है, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेंगे। और कृष्ण उसको पैरों से ठुकरा देंगे प्रेम के लिए, उनके लिए प्रेम ही एकमात्र चीज है, इसलिए उसमें नहीं देखा गया गोपियों ने उनसे शादी की कि नहीं की, जो आया उसी को अपना लिया। ये कृष्ण में ही, कृष्ण लीला में ही संभव है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला दिखाया है कृष्ण में, राम में, और रामचंद्र कृष्ण में लीला पुरुषोत्तम रसमय विग्रह के रूप में दिखलाया। यदि मर्यादा करके भी यदि भगवान के नाम में रुचि ना हो, भगवान के भक्ति में रुचि ना हो, तो वो किस काम का, यदि कृष्ण प्रेमी नहीं हुआ। इसलिए प्रेम की महत्व दिखलाने के लिए ही श्रीमद भागवत की अवतारणा है, श्रीमद भागवत, इसलिए परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, निर्विद्यमान नाम इच्छता अपतो भयम जोगी नाम निप निर्णितम हरे नामानुकीर्तन, सबको नाम संकीर्तन करना चाहिए। स्थाने स्थितार्थ मांगनोगी, जो गृहस्थ में है वो, जो व्यवसाय में है, जो वाणिज्य में है व्यवसाय में है, जो जहां पर है, जो त्यागी है, जो त्यागियों के भी गुरु है, और जो त्यागियों में भी परम भक्त प्रेमी है, उन सब लोगों के लिए ही भगवान नाम कृष्ण नाम करनी है। अब इसी चीज को दिखलाने के लिए कह रहे हैं, एक था ब्राह्मण का लड़का, बात है कान्यकुब्ज देश की। कान्यकुब्ज कहते हैं गंगा और जमुना के बीच का जो प्रांत है, प्रदेश है, उसको कहते हैं कान्यकुब्ज। आजकल कानपुर ये एरिया को ले लिया जाए, मैंने यहां से गंगा और जमुना निकल करके गंगोत्री और जमुनोत्री से प्रयाग में मिली है, उसके देश का भूभाग, वहीं का एक कोई ब्राह्मण लड़का था, बड़ा ही सदाचारी था, वेदों का भी स्मृतियों का पठन पाठन किया, बड़ा ही सुचरित्र था, माता पिता की सेवा करता था, प्रतिदिन यज्ञ में आहुति देता था, जो पहले जो किया जाता था, अग्निहोत्री वो ब्राह्मण था, सदाचार संपन्न। एक दिन माता पिता की सेवा के लिए वो जंगल में गया, फल फूल लाने हैं और लकड़ी भी समीधा लानी है यज्ञ के लिए, सूखी लकड़ियां फल फूल जो कुछ मिल जाए वो लाने के लिए गया। जब गया वहां जंगल में, देखा एक शूद्र, शूद्र किसको कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें हमारे यहां आचार जैसा विभाग नहीं था, शूद्र माने जो शोक करता है उसको कहते हैं शूद्र। रावण को राक्षस कहा गया, रावण तो था ब्राह्मण, ब्राह्मण का लड़का, किंतु उसको बतलाया गया शूद्र से भी अधिक, यहाँ का फिर राक्षस उसको कह दिया गया। इसलिए हमारे पुराने शास्त्रों में जैसे कि गीता है चतुर वर्णम मैं सिस्टम गुण कर्म व्यूहादर्शन, गुण और कर्म से पहले ये निरूपित होती थी, आजकल ऐसा नहीं जो ब्राह्मण का लड़का भले वो कुछ भी इसमें ना हो, मद मांस सब कुछ खाता है, डकैती हत्या सब करता है, कभी वो ब्राह्मण है, भले जनेऊ भी ना लगाए, उपवीत भी ना पहने, सब दुराचार सब, तभी वो ब्राह्मण। उनका व्यवसाय क्या है, जूते का कारोबार करते हैं, चमड़े का, किंतु ब्राह्मण जैसे से उनको नीचा कर दिया, सामा से नीचे यदि कर दिया तो आपके ऊपर में बिगड़ जाएंगे, और यदि नीच कुल में भी जन्म लेने वाला प्रहलाद जैसा भी व्यक्ति है उसे हम अपना शूद्र कहेंगे, किंतु यथार्थ में ऐसा प्रहलाद महाराज देवताओं के भी गुरु है, ब्राह्मणों के भी गुरु है, इसलिए गुण और कर्म से ये सभी भाग पहले था, आजकल बोलता कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसलिए कहा गया अब ये सब चीजों को छोड़ो, संस्कार होना भी बड़ा कठिन है, इसलिए अब तो जो कोई जहां है जिस स्थान में गृहस्थ है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है, कुछ भी है, साधु है, संत है, जहां स्थान स्थित अपने स्थान में रह करके भगवान का नाम करे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरे कृष्ण ये नाम करे। तो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी करें, अब आपका 7 दिन का समय है, 7 दिन सुनिए और सहज रूप में भगवान का नाम कीजिए, इसी से आपका उद्धार है। इस चीज को बतलाने के लिए बताया कान्यकुब्ज में वो ब्राह्मण था, वो गया फल फल लाने के लिए और लकड़ी लाने के लिए समिधा लाने के लिए गया और वहां पर देखा एक शूद्र मद पान करके मदिरा पान कर और उसके साथ में कुछ व्यवहार कर रहा है। लड़की भी शुद्ध वो अर्ध नग्न अवस्था में है और उसके साथ बुरे तरह से वो पेश आ रहा है। इसको देख करके अपने को चेक नहीं कर सके, बस वह जैसा कर रहा था आंख तो उन्होंने हटा दिया वहां से और लकड़ी और कुल फल लेने के लिए चले गए और मन को कह रहे थे भाई तुम उसकी चिंता मत करो, भाई उसकी चिंता मत करो। बहुत संयम करने की चेष्टा की किंतु जितने ही संयम करने की चेष्टा की जैसे आखिर दलदल में फंस जाता है और निकलने की चेष्टा करता है उतना ही धसता हुआ चला जाता है। ठीक उसी तरह से इनकी अवस्था है, मन को एकाग्र करना चाहते हैं किंतु मन का एकाग्र बस उसी की ध्यान। देखो तो कैसी सुंदर कैसे वो पीर पीर पीरा था कैसे उसके साथ में अभद्र व्यवहार करा, करते 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 चेक नहीं कर सके, घर लौटे मन को वही रख दिया है, शरीर से यहाँ आए, आकर के माता पिता की सेवा करनी चाहिए और सोचने लगे कि उससे कैसे मिलूं, इसलिए कुछ सामान लिया जिसे प्रसन्न कर सकते हैं, वहां पर फिर पहुंच गए रात में। इसी तरह से प्रतिदिन अपने पिता की संपत्ति जो जोड़ी थी बड़ी मुश्किल से वो सबको उसको दे दिया और यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद में अपनी विवाहिता स्त्री बच्चों को माता पिता पुत्र को सबको छोड़ करके बस उसके साथ में रह गए। उससे उनको 8 बच्चे पैदा हुए। जब छोटा जो सबसे छोटा बच्चा है उसका जब जन्म हुआ तो पूर्व जन्म के या इसी जन्म के संस्कार से ब्राह्मण तो थे ही पहले इसलिए उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। हमारे यहाँ पहले ऐसा ही संस्कृति थी, किसी का नाम दास कृष्णदास, लड़कियों का नाम राधा दासी विशाखा चित्रा ऐसे सुंदर सुंदर सीते पार्वती ऐसे नाम रखे जाए। आजकल नाम सुन करके कुछ समझ में नहीं आता है टॉनी नाम कुटिंग शूटिंग कोई मान मानी इसका अर्थ ही नहीं होता है। अरे पहले तुम जब लड़कियों के नाम राधा दासी सीता नाम रख देता या राम दास रख देता राम रखता गोविंद कितने सुंदर सुंदर ये नाम है सहज रूप में हमारा नाम हो जाता और हमारा कल्याण हो जाता। किंतु ऐसे हम संस्कार दें जो हिंदू को करके भी हम ऐसा नहीं याद कर पाते, बहुत जगह पूछते ही है किंतु कोई असर ही नहीं पड़ता है उन पर। आजकल कुछ हरे कृष्ण मूवमेंट इत्यादि के द्वारा या हम लोगों के प्रचार के द्वारा महाप्रभु के प्रचार के द्वारा में कुछ कुछ सुधार हुआ है किंतु न जाने कितने दिन तक ये सुधार चलेगा या कुछ दिनों के बाद में ऐसे जैसे कि ये सब चारों तरफ में कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है, धर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं है क्यों धर्म से संबंध है, ऐसी चीजें ऐसे प्रतिमा देख करके हम भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है अपने बच्चों का नाम भी वैसा ही रखेंगे जैसे अत्यंत गर्वित होने पर भी निम्न होने पर भी बच्चे का नाम नारायण रखा। इसका फल क्या हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं ओ इसने नाम तो रखा इसको पता नहीं था, जिस दिन उसने नाम रखा उसी दिन उसका नामाभास हो गया। भगवान के नाम 3 प्रकार के होते हैं, एक नाम अपराध जो और एक नाम आभास और एक शुद्ध नाम, 3 प्रकार के। जिसके हृदय में कोई कलुष नहीं है भगवान से संबंध हो गया है जिनकी दीक्षा हो गई है दिव्य ज्ञान हुआ है ये मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर संदर्भ में शरीरी हूं आत्मा हूं और वो भगवान का दास। जितने भी विश्व ब्रह्मांड में जीव वो माने और ना माने किंतु सभी कृष्ण के दास है, कोई माने और ना माने क्योंकि किंतु यही है जब वास्तव में यही यथार्थ थी कोई माने और ना माने हम कृष्ण के दास दासी हैं, कृष्ण के भूलने से ही हमारी अवस्था है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इसी चीज को करे भयं द्वितीयाद अवनिवेश पश्चात ईशात अपे तस्य विपर्यो स्मृति, जब ये भगवान को हमने भूल गया हम लोग उसी समय भगवान की माया आकर के हमें पकड़ लिया और हमें भगवान से बहुत दूर फेंक करके हमारे स्वरूप को ढक लिया। कृष्ण को भी भूल गए अपने को भी भूल गए और जगत को भी भूल गए। माया किसको कहते हैं, माया जो नहीं है उसको वही माना, इसका नाम है माया। क्या नहीं है हमारे ये बाप नहीं पिता नहीं भाई नहीं नहीं हमने अभी उसी को ये हार काम रक्त मांस को ही हमने मान लिया, आत्मा तो बहुत दूर की बात रही शरीर में से आत्मा निकल गई, सोचते हैं हमारे पिताजी मर गए और पिताजी का संस्कार करें। अरे तू किसका संस्कार कर रहा है? माता जी का तो वो तो चले गए दूसरी जगह आत्मा, उनका न जन्म है न मरण है न उनका कोई संस्कार। अब जो ये शरीर का हम लोग संस्कार कर रहे हैं, समझ में नहीं आता ये सब चीजें। गीता में कृष्ण ने लाख बार समझाया, समझ में नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं वो सब कुछ दे देकर अंत में एक पुत्र का नाम रखा नारायण, जिसने काम किया। इसको कहते हैं एक तो नाम है, जब शरीर में इस प्रकार से आत्माभिमान रख करके जब मैं शरीर ही मैं हूं और ये संसार मेरा है, मैं और मेरा का भाव रहता है अहम इत्यादि का भावना, उस समय नाम करते हैं तो ये नवाभास हो सकता है। और जब वैष्णव द्रोह करके नाम के प्रति अपराध करते हैं तो ये नवा अपराध होता है। और उसने जो नाम रखा उसका नवा अपराध नहीं होने के कारण नवाभास हुआ। उसे हुआ क्या? उसके भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी पाप थे वो सब जल करके खत्म हो गए, किंतु उसको मालूम नहीं हुआ। किसको मालूम हुआ ये पाप जल करके खत्म हो गए? यहां तक कि परम विज्ञ जो थे बुद्धिमान, जो धर्म और अधर्म में भेद समझते हैं, उनको भी पता नहीं चला। इसलिए जब उसका मरण होने लगा उसके पहले उसने अपने बच्चे को नारायण इधर आ जा गोदी में लेता था, नारायण इधर आ जाओ पानी पियो खाओ, इस तरह से करते करते उसका पुनः पुनः अभ्यास होने लगा। मरते समय तो उसको ज्ञान नहीं जैसे इस नाम का क्या प्रभाव। जिस समय में उसकी मृत्यु आई उसमें बच्चा वो पास ही खेल रहा था, बस अंत समय में बच्चे के मुख के कारण इसका क्या होगा, नारायण नारायण एक बार नारायण किया था, वो भी आहा ही निकला होगा, पूरा नहीं निकला। और उसका फल ये हुआ उसी समय में तन मन और वचन से पाप के जितने कर्मों का फल है उसके लिए तीन दूत उसको पकड़ने के लिए आए। तीन ही क्यों आए, चार क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए, आदमी पाप तीन तरफ से करता है, या तो मन से या वचन से या तन से करता है। किसी को मारा या मन से कहा कि बड़ा भाई दुष्ट है, या तन से मन से या वचन, मारो उसको गाली देता है, इसलिए ये तीन प्रकार के पाप होते हैं, इसलिए तीन आए। और उसको पकड़ करके उसकी आत्मा को शरीर से निकालने जा रहे थे, बड़े कष्ट से ये ऊह आह करने लगा, छटपट करने लगा। उसी समय में आवाज आई, रुको ठहरो ठहरो, मां भयम भय मत करो,
मां हुई मां हुई।
उसी समय देखा अरे कौन निकालना था, छोड़ करके उधर देखने कितने में देखा नारायण, चार अक्षर ही मानो चार दूतों का विष्णु दूतों का स्वरूप लेकर के वहां पर उपस्थित हो गए और आकर के उनको रोक दिया। क्या कर रहे तुम ठहरो? उन्होंने कि मैं क्या कर रहा हूं, आप कौन है? पहले मैं कौन हूं इसका आपको पीछे विचार होगा, तुम लोग बताओ इस व्यक्ति को तुम लोग पकड़ करके क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने महादुष्कर्मी है, इसने जीवन में कोई भी पुण्य काम नहीं किया है, ऐसा कोई विचार नहीं है जो इसने नहीं किया है, इसलिए हम लोग इसे पकड़ करके ले जा रहे हैं। जब महाराज जी के यहाँ इसके वो दंड विधान करें, नरक में ये जाएगा, इसको नरक में हम लोग कष्ट देंगे। अरे धर्म के ठेकेदारों, धर्म और धर्म किसको कहते हैं तुमको कुछ पता है? तुम इसको नहीं ले जा सकते। यदि कोई व्यक्ति जितना भी पाप किया हो, यहां तक कि मातृद्रोही पितृद्रोही भी हो और न जानकर कि ये सब किया हुआ और उसे मरते समय अंत में यदि एक बार भी अवश्य होकर के विवश होकर के भी यदि भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सब पाप उसके दूर हो जाते हैं। अब इसका पाप नहीं है, इसको तुम लग नहीं ले जा सकते, इसलिए उनको रोक दिया। नाम की बहुत महिमा उसमें सुनाया। इसके बाद में मैं संक्षेप में बतला रहा हूं क्योंकि
पौने नौ
तक बढ़ गया, तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि उसके बाद में उन लोगों को मार करके भगा दिया। वो लोग जब महाराज जी के पास में गए उससे प्रभु मैं हम लोग जानते थे कि आपसे बढ़कर के और कोई जगत का शासक नहीं है, आप ही अधर्म अधर्म का फल देने वाले हैं, आपके इस आदेश को रहते ही इन चारों में ले जाने कौन थे, आप मुझे मार करके भगा दिया, उस पापी को लाने नहीं दिया, बतलाइए तुम वो कौन है जो आपसे ऊपर भागा भी कोई है? अरे तुम कहां गए थे भूल से, हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे जैसे कोटि 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 जन कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि विष्णु और महेश सब उसके नीचे है, अगिनत विश्व ब्रह्मांड है, हम तो एक ब्रह्मांड में केवल है, ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है, जहां पर लाखों लाखों मुख वाले ब्रह्मा है, लाखों लाखों मुख वाले यम है, शंकर इत्यादि है, उनकी महिमा आता है। जैसे खुद से भी कोई अवन नाम कर दिया है, जैसे व्यभिचारी ही है, खबरदार उसके पास नहीं जाना। और श्लोक क्या है,
जीवान
व्यक्ति भगवान गुण नाम अध्येय चेतस चरणामृति तच्चरणारविंद कृष्णाय नमो नमति दक्षिणा एकदाति तान आनयतम असतो अक्त विष्णु। देखो यदि किसी ने विवश होकर के भगवान का को ये नमस्कार किया एक बार भी, यदि एक बार भी भगवान का नाम का चिंतन किया, एक बार भी ठाकुर जी के सामने उनको नमस्कार करके साष्टांग प्रणाम या जैसे तैसे भी कर दिया, जिसके गले में तुलसी हो, मस्तक में तुलसी और गंगाजल का स्पर्श हो, ऐसे लोगों के पास कदापि उसके तीन से चार सीमाओं में मत जाना, दूर से उनको प्रणाम करके लौट आना। यदि पापी भी है तो उसका पाप का फल जैसा होगा वो प्रभु ही देंगे, उनके अधीन है, हम लोगों के अधीन में नहीं है। हमारे लिए प्रणम है, तुम्हारे लिए प्रणम है। इन सब चीजों को सुना उसने और विष्णु के दूत उसको अभय दे करके, और वो जब दूत भाग गए जम के, तब वो उठ करके खड़ा हो गया, बैठ गया। सुचारी, मैंने ये सब कुछ स्वप्न देखा न सत्य देखा। तब उसने विचारे, नहीं तो ये सब मैंने तो असत्य देखा नहीं, भगवान नाम की इतनी महिमा है मैं तो जानता नहीं था। ये हमारे पहले बार जब नाम रखा था बच्चे का नारायण, उसी समय हमारे पाप दूर हो गए थे, और पीछे से जो किया वो अभ्यास मात्र हमारा था, पुनः पुनः तो नाम में इतनी भारी महिमा है। बस सुन करके वहां से उठ खड़ा हुआ है, और अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, अब तो मैं हर बार जाऊंगा। बस उस समय में गंगा द्वार, गंगा जी के किनारे हर द्वार में चला गया, एक मंदिर में चला गया है, और मंदिर में रह करके बस वहीं पर झाड़ू देता, मंदिर में जो कुछ प्रसाद होता वो प्रसाद देता, भगवान की कथा सुनता, और बड़े श्रद्धा के साथ में भगवान नाम करने लगा। करते करते कुछ दिनों के बाद में पाप तो पहले दूर हो गए थे, अब उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ। भाव के बाद में जैसे हम भजन करते हैं तो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद में भाव, भाव होने के बाद में स्वरूप सिद्धि, इसके बाद में वस्तु सिद्धि, तब वैकुंठ में जाते हैं। इस तरह से उसको भाव हुआ उत्पन्न। भाव होने का लक्षण क्या है, नैनं गदा सुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकर निचितं बहु कदा हो नाम गहने भविष्यति। शुद्ध नाम होगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी, कभी नहीं आके सूखेगी, हृदय पुलकित हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा, इत्यादि सब लक्षण। कहीं भी कोई पाप करने की स्पृहा नहीं होगी, भगवान नाम छोड़कर के चिंता और कहीं मन जाएगा ही नहीं, एकदम बंद जाएगा, ये सब उसके लक्षण है। सब जहाँ भगवान का धाम है, जैसे वृंदावन धाम, नवदीप धाम है, ऐसे धामों में रहने की इच्छा होगी, ये सब लक्षण उसके हैं। इसके बाद में फिर शरीर को छोड़ करके तब फिर वहां जाता है, जहाँ पर भगवत धाम है वहां जाकर के भगवत लीला में प्रवेश करके वस्तु सिद्धि के बाद में प्रेम होता है, तब भगवान का दर्शन होता है। ये जबकि अंतिम समय हुआ, फिर भगवान नाम करता करता रहा, इतने में चारों दूत वही आए और कहा कि आप कृपा करके पधारिए वैकुंठ में। इन्होंने कहा जैसे हमारा एक प्रश्न है, आप लोग, पहली बार मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था, निवेदन करना चाहता था प्रणाम करके, किंतु आप लोग अंत ध्यान हो गए, और यही इस समय में आप लोग आकर के मुझे कह रहे चलने के लिए, विमान पर चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि पहली बार तुम्हारे पाप तो दूर हो गए थे, किंतु प्रेम नहीं था, प्रेम के लिए साधन करना पड़ेगा, वैष्णव के साथ में रहना पड़ेगा, विशेष करके रसिक वैष्णव के साथ में, तब प्रेम आएगा, ऐसे नहीं होगा, अब तुमको हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो गई है, इसलिए आप सही चल। इतने कहते कहते उनका यह शरीर पांच भौतिक और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का अपने आप झड़ गया शरीर से, और शुद्ध आत्मा से निकली, शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए और वैकुंठ को। इस तरह से नाम की इतनी महिमा है, किंतु इस नाम से भी ब्रज में नहीं जा सकते, चैतन्य महाप्रभु उस नाम को देने के लिए आए थे, इसलिए कैसे होगा, रसिक वैष्णव का संग करने से, राधा कृष्ण का चिंतन करने से, स्मरण करने से, अपने चित्त को उनके समान बनाना पड़ेगा, या तो सखाओं का भाव, अथवा वात्सल्य में की मूर्ति है यशोदा नंद का भाव, अथवा सखियों का भाव, गोपियों का भाव, तब हम ब्रज में पहुंच सकते हैं, अन्यथा साधारण नाम से। इसलिए हम लोगों को जिस भी अवस्था में, उसी समय उसी अवस्था से, जिस रूप में हम लोग हैं, भगवान का नाम करना चाहिए। समस्त नामों में ये कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु का लाया कलि संकर उपनिषद का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, बस इस नाम। आज बहुत रात हो गई, 10 बज गया, इसलिए मैं अपने को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि फिर कभी समय मिलेगा हम लोग और वृंदावन की सुंदर सुंदर मधुर मधुर अत्यंत आकर्षित लीलाएं हैं, यदि जब कभी सुजोग मिलेगा। मैं अभी कल रहूंगा, हमारे ये भी रहेंगे, परसों रहेंगे, हम लोग 25 तारीख को यहाँ से जाएंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न इत्यादि होगा या कुछ पूछना होगा, मैं कुछ जानता तो नहीं किंतु जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए, इस विषय में कुछ बतलाने के लिए भी चेष्टा करूँगा। आज यही प्रश्न बन जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे
स्वामी महाराज की जय, यानी तलीला प्रविष्ट उष्णपास भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रमाणंद
narration of Ajamiyo and the glories of the holy name of Krishna.
Aje apne Srimad Bhagavatam 36 skandha ma Ajami rakhyan ma thi Krishna bhagwan na naam na mahima vishe hamri
hascha kripa sindhubhyay vacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो एक पहले श्रीपाद जसमती नंदन जी एक कीर्तन करने के लिए पहले मैं कीर्तन करता था, विशेष करके स्वामी जी के साथ में जब था तो कीर्तन तो करता था, गला भी ठीक था। अब कुछ परिणत उम्र में गला भी साथ नहीं देता, इसलिए वैसा तो कीर्तन नहीं कर सकता। तब थोड़ा सा इनके आग्रह के कारण एक बंगला का कीर्तन, जिसको जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही प्रिय है, विशेष करके रूप गोस्वामी के संबंध में वो कीर्तन है। हम लोग के आचार्यों ने कहा है कि जब तक कि रूप गोस्वामी के श्री चरण कमलों की धूली में हम नहीं लौटेंगे, उसके द्वारा अभिषिक्त नहीं होंगे, तो भक्ति का यथार्थ हम स्वरूप नहीं समझ सकते। ये महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय थे और कृष्ण लीला में रूप मंजरी इनका नाम था। यदि रूप गोस्वामी के चरणों में, रूप मंजरी के चरणों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे सभी आचार्यों ने श्री रूप गोस्वामी की वंदना की है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय के विचारों को, जो कि जगत में अवतीर्ण हुए थे, कृष्ण ही स्वयं राधा जी के भाव को लेकर के महाप्रभु के रूप में जगत में अवतरित हुए। किस लिए अवतरित हुए थे कि कृष्ण लीला जब समाप्त हुई तो कृष्ण ने विचार किया कि मैं भक्ति क्या, मैं रस का समुद्र हूं, मैं कुछ रसास्वादन करने के लिए ब्रज में अवतीर्ण हुआ। नंद बाबा ने वात्सल्य के भाव से, यशोदा मैया ने, सखाओं ने सख्य रस से और गोपियों ने मधुर रस से मेरी सेवा की। लीला ग्रंथ में वो विचार कर रहे हैं, मैं भक्तों को प्रेम करता हूं, मैं भक्तों से स्नेह करता हूं, भक्त लोग हमसे स्नेह करते हैं, कृष्ण भक्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, भक्त लोग कृष्ण से स्नेह करते हैं। जितने भी भक्त हैं उन भक्तों में हनुमान जी श्रेष्ठ है। उन हनुमान जी में भी से भी श्रेष्ठ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव है, क्योंकि हनुमान जी राम के चरणों की सेवा करते हैं, उनके लिए अपने को समर्पण कर रखा है। किंतु रामचंद्र जी के पलंग पर बैठकर, गले में हाथ देकर, गलबहियां देकर प्रेम नहीं कर सकते, नीचे बैठेंगे, हाथ जोड़ करके रहेंगे। वो रामचंद्र जी से हंसी दिलगी नहीं कर सकते। और इधर में अर्जुन इत्यादि कैसे हैं कि कभी नर जी को इच्छा हुई भगवत दर्शन की, तो देखा जी एक पलंग पर सोए हैं कृष्ण और दूसरी तरफ से उसी पलंग पर अर्जुन सोए हैं। इधर में यहां देख करके अर्जुन उसी पलंग पर सोए हैं, कृष्ण पलंग पर सोए हैं। अर्जुन का शरीर
कृष्ण के चरणों की ओर, और कृष्ण का पैर अर्जुन के चरणों की तरफ। कृष्ण ने अर्जुन के श्री चरणों को अपने वस्त्रक्षल से लेकर और अपने हाथों से लबाए रखा, और अर्जुन ने भी कृष्ण का चरण अपने वस्त्रक्षल से लेकर अपने को दबाए रखा है। कृष्ण के चरणों की तरफ में द्रौपदी जी, सुभद्रा जी खड़ी हैं, चमर डुला रही हैं, और अर्जुन के चरणों की तरफ में सप्तभामा, रुक्मिणी इत्यादि रानियां चमर डुला रही हैं, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, आंखों के आंसुओं की धारा गिर रही है। हनुमान ऐसा नहीं कर सकते, संभव पर नहीं उनकी। इस हनुमान अर्जुन इत्यादि से भी लाखों गुना श्रेष्ठ उद्धव है। कृष्ण के सखा हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, सब कुछ है उनके साथ साथ में सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीटते हैं, और यदि अपना कहीं प्रतिनिधित्व करना कराना होता है, अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता है, माने अपने को जहां जाना होता है वहां वो उद्धव को भेजते हैं। गोपियों के यहाँ नंद बाबा को समझाने के लिए भेजना है, सांत्वना देने के लिए, तो उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव जी गोपियों की चरण धुलने के लिए कहते हैं, आशाम हो चरण रेणु जुषाम। मैं यदि कहीं वृक्ष लता गुल्म ब्रज में हूं और गोपियां चल रही हैं, उनके चरणों की धूली यदि हमारे शरीर पर यदि हो जाए, लग जाए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिसको श्रुतियां आज तक वेदों ने, श्रुतियों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनके श्री चरण कमलों की धूली को प्राप्त नहीं कर सके, आज उद्धव जी के हृदय में लालसा जगी उनकी चरण की धूली हो जाए। और इन गोपियों में जो चाहते हैं जिनकी चरण की धूली, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधिका जी। राधिका जी उनका नाम हुआ, कृष्णेन आराधिता, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं इसलिए उनका नाम राधिका हुआ, और राधा नाम इसलिए है जब कृष्णम आराधयति, कृष्ण की जो आराधना करते हैं ये राधा, और राधिका नाम हुआ कृष्णेन आराधिता। हरे कृष्ण जो नाम है उसमें जो पहला जो हरे कृष्ण है, हरे ये कृष्ण के चित्त को भी अपने परम प्रेममयी सेवा से, अपने परम सुंदर गुणों से कृष्ण के भी चित्त को हरण कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम हरा है। इसलिए हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण होता है, और हरे राम वाला में जो हरे राम देव और राम देखते हैं वो राधा जी के साथ में, वो दासरथी राम नहीं बैठेंगे, वो बैठेंगे कौन, राधा रमयति इति रामः, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वो गोविंद जो जो राम है वो राधा रमयति, राम राधा के साथ में जो आनंद अनुभव करते हैं वो यहाँ पर राम शब्द का है। तो समस्त लोगों में जो कृष्ण की प्रीति विधान करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उसमें राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अब राधिका जी कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण राधिका जी को जो प्रेम करते हैं, एक पलड़े पर रख दिया, पलड़ा समझते हैं तराजू का, हम समझते हैं गुजराती और हिंदी प्राय वो समझ आप लोग समझ लेंगे, तो एक पलड़े पर कृष्ण का प्रेम जो राधा के प्रति है उसको एक तराजू के पलड़े पर रख दिया, और दूसरे पलड़े पर रख दिया, राधा जी कृष्ण को प्यार करती है, प्रेम करती है, उस प्रेम को, कौन प्रेम नीचा होगा, कौन प्रेम ऊपर उठेगा, राधा जी कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो बहुत गंभीर और भारी है, कि कृष्ण राधा जी को प्यार करते हैं वो भार है, राधा जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बहुत भारी होता है, कृष्ण का प्रेम ऊपर उठ जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए राधा जी का प्रेम एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ माने एकांगी है, केवल कृष्ण को वो प्रेम करती हैं, वो ठोस और अखंड है, और कृष्ण का जो प्रेम है राधा जी के तरफ में वो बहुनिष्ठ है, अर्थात कोटि कोटि लोग विश्व ब्रह्मांड में भक्त हैं, सबका के प्रति उनका प्रेम बटा हुआ है, राधा जी के भी प्रति बटा हुआ है, वो राधा जी के लिए किसी को छोड़ नहीं सकते, किंतु राधा जी सबको छोड़ देंगी कृष्ण के लिए, आ रहा है समझ में, इसलिए राधा जी का प्रेम बहुत ऊंचा है। कृष्ण ने सोचा राधा जी मुझे देख करके और हमारे मधुर भावों को, हमारा मधुर बंसी बजाना, हमारा इतना सुंदर रूप है, मधुर रूप है ना? लीला माधुरी, बेनु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी इतनी अधिक है, जगत मुक्त हो जाता है। किंतु राधिका जी तो ऐसी मुक्त हो जाती हैं कि उनको अष्ट सात्विक भी का रोमांच, अश्व, पुलुक, गदगद, यहाँ तक ही मूर्छित हो जाती हैं, शरीर का होश नहीं होता। मुझे तो इतना होता नहीं उनको देख करके, इसलिए वो किस भाव से हमें देखती हैं, उनका राधा जी का प्रणय, कृष्ण के प्रति प्रणय कैसा है। और प्रणय किसको कहते हैं, ये व्याख्या करने लगे तो 10-5 घंटा इसी में निकल जाए। अब इसको साधारण रूप में से, इसको प्रेम, राधा जी का हमारे प्रति प्रेम कैसा है, राधा या प्रणय महिमा की दृशा कैसा है, और हमारे इन रूप को, गुणों को देख करके वो कैसा उनको लगता है, और इसको करके उनको कैसा आनंद होता है, जैसे वो तन्मय होकर के शरीर की शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो देती है, मूर्छित हो जाती है। कृष्ण उनकी गोदी में बैठे हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसा खोजने लगती है। कभी कभी कृष्ण नहीं है और तमाल वृक्ष को गोदी में ले लिया और ले करके, और एकदम हंसने लगती है, उनसे बातचीत करने लगती है, मानो वो कृष्ण हो। ये सब कैसे होता है, इसलिए इस चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने राधा जी का भाव चुरा लिया, और ऊपर से उनके अंग की कांति को चुरा करके महाप्रभु के रूप में वो जगत में पधारे। और इसी के बहाने प्रेम का आस्वादन करने के लिए, राधा प्रेम का, और जगत के जीवों को उसका एक कण मात्र देने के लिए भारतवर्ष में सर्वत्र, ब्रह्मांड में सर्वत्र घूमे, नाम दिया, साथ साथ में नाम के माध्यम से प्रेम दिया, कृष्ण का प्रेम दिया। वह प्रेम जिसको वो आस्वादन कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा कणिका का भाव वो देने के, इन दोनों प्रेम में कुछ विशेषता है, वो समय अनुसार से पीछे बताएंगे। इस चीज को जब देने के लिए आए, अब देखिए थोड़ी सी एक महिमा होगी। कभी चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ले चुके हैं, बुद्धिमंत खान नाम का एक व्यक्ति थे, वो राजा थे एक जगह के, वो जब राजा थे तो उस समय अकबर का पीरियड था, अकबर का शासन का, समस्त भारतवर्ष में मुगल शासन चल रहा था, तो वो उनके अधीन में कुछ मुसलमान भी राजा थे बंगाल में उस समय में, तो वो हुसैन शाह के एक कर्मचारी जैसे थे, बहुत बड़े भारी जमींदार राजा के रूप में। उनके यहाँ एक मुसलमान कर्मचारी था, उसका नाम था हुसैन शाह, तो बुद्धिमंत का नाम, उनका नाम सुबुद्धि राय था राजा, तो वो वहां पर उनके अधीन में काम कर रहा था। एक दिन की बात है, उसको कुछ गांव सौंपे, जे इसकी मालगुजारी तुम ले आओ, इकट्ठा करके मुझे दे। उसने लाखों रुपए वसूल किए और सुबुद्धि राय जी को, अपने प्रभु को नहीं दिया कुछ, अपने आप खा गया। ऐसे कितनी बार वो कर किया और खाया, मालगुजारी इनको दिया नहीं। उन्होंने उसको बुलवाया, तो बड़ा बदमाश है, तुमको मैंने लगान या मालगुजारी लेने के लिए कहा, तुमने लिया नहीं, दिया नहीं मुझे, सब हड़प गया, खा गया तू, मैं तुम्हें दंड देता हूं। उनको तो चाहिए था, जो मुसलमान कोई राजा होता तो साथ ही साथ में तलवार के घाट उतार देता, किंतु बड़े दयालु थे, सोचा जाए इतने दिनों तक काम किया, थोड़ी सी गलती की है, कोई बात नहीं, कहा जाए ए कर्मचारी लगाओ, इसे एक कोड़ा लगाओ। बस कोई आया और एक कोड़े, जैसे घोड़े के लिए लगाते हैं, और जोर से उसे एक बार, साथ साथ में यहां पर फफोले उठ गए, और चिकित्सा करके महाराज ने उसको ठीक भी करवा दिया, किंतु वो दाग रह गया। कुछ दिनों के बाद में आप लोगों ने औरंगजेब का या मुसलमान शासकों का वो सब सुना होगा, कैसे अपने बाप को भी मारकर, अपने भाइयों को मारकर, बहनों को मारकर के राजा होते हैं, ये सब तो इतिहास ही इसका साक्षी है। कुछ दिनों के बाद में धोखा दे करके जैसे तैसे वो महाराज बन गया, इनके ऊपर काफी बन गया, और उसने बेगम से शादी भी कर ली और राजा हुसैन शाह बन गया, जिसके यहाँ हमारे रूप सनातन जी नौकरी करते थे पहले, वो लोग उनके प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो वो बन गया। एक दिन उसकी बेगम उसे स्नान करा रही थी और स्नान करते 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 वो दाग देखा, अरे ये दाग कैसे हो गया पीछे में, आप बतलाइए तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं आप जरूर बतलाइए। वो बतला नहीं रहे थे और ये मान नहीं रही थी बेगम। अंत में कहा उसने, यदि आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, विष खा लूंगी। अंत में बाध्य होकर के बतला दिया कि मैंने ऐसे कोई अपराध किया, आप क्षम्य। और महाराज ने दया करके हमको एक कोड़े लगवा करके बस छोड़ दिए और फिर हमें वो काम भी हमको दे दिया। अच्छा महाराज ने, वो आपके अधीन अपराध कर्मचारी है और उसने आपको ऐसे कोड़े मारा है। अच्छा आप उसका जल्दी से प्राण दीजिए, उसका वध करा दीजिए। नहीं मैं ऐसा नहीं करा सकता, मैं तो कराना पड़ेगा किसी हाल से। मैंने कहा कि भाई इतना मैं नहीं कर सकता, मैंने उसका अन्न खाया है, नमक खाया है, मैं इतना को हाँ ऐसा कर सकता हूँ कि उसको अपने बधने का पानी पिला दूं। और हिंदू लोग तो इतने डरपोक अपने धर्म भेरु होते हैं, जो मुसलमानों का छू दिया या कोई खा लिया कुछ या उनका पानी पी लिया, बस वो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको हम अपने बधने का पानी, लोटे का पानी मैं इसे पिला देता हूँ। ये कह करके उनको बुलाया और बुला करके उनको पानी पिला दिया अपने बधने का, जिसे वो पीते हैं सब। अब इन्होंने कहा जब तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई, उन लोगों ने भी सब लोगों ने सुना अरे इसकी तो जाति भ्रष्ट हो गई, राज्य भी छोड़ दिए, घर भी छोड़ दिए, स्त्री पुत्र छोड़ करके अब तो मैं जाति भ्रष्ट मुसलमान बन गया, अब कैसे मेरा उद्धार होगा। उन्होंने काशी के पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा जैसे हाँ एक प्रायश्चित है, जिस प्रायश्चित के द्वारा तुम शुद्ध हो सकते हो, वह है एक कड़ाही में तेल खौलता रहेगा, खूब खौलता रहेगा और उस तेल को लेकर के साथ ही साथ तुम्हारे मुख में भर दिया जाए तो तुम मर जाओ। मिथिला में गए तो मिथिला वालों ने कहा हाँ एक उपाय है प्रायश्चित, इससे कम वाला कोई प्रायश्चित नहीं। ये प्रायश्चित है कि लोहे को गला कर और गला करके जब लाल हो जाए, जब तरल हो जाए तो तुम्हारे मुख में ढाल दिया जाए, तुम पवित्र हो सकते, ये प्रायश्चित है। तो ये मरने के बाद मरना ही हो गया, बल्कि ऐसे मरना एक बात थी और ऐसा तड़पता हुआ वो मरेगा तो ये बड़ा भारी मुश्किल है। और रोता कलपता किसी प्रकार से सुना जी महाप्रभु इसी रास्ते से जा रहे हैं वृंदावन में, रास्ते में आकर के उनके चरणों में गिर गया। नहीं क्यों रोते हो, वो कहा जी भाई हमको तो काशी के मिथिला के और समस्त भारत के बड़े बड़े पंडित विद्वान संस्कृतज्ञ हैं, वेद वेदांत को जानते हैं, उन लोगों ने कहा जैसे तुम तो जाति से भ्रष्ट हो गए, इसलिए तुम्हारे मुख में ऐसा दिया जाएगा तब तुम शुद्ध हो। बिना बिना प्राण गए अब इस जन्म में इससे शुद्धि ही नहीं है। अब आप कृपा करके बतलाइए जी मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहता। आप कोई यदि उपाय बतलाएं, आपके ऊपर में मेरा पूर्ण विश्वास है, आप जो कह देंगे मैं मान लूंगा। उन्होंने कहा एक बात कर, अभी तुम बोलो कृष्ण कृष्ण, एक बात तुम बोलो, बस इसी से तुम्हारा सब शुद्धि हो जाएगी। पूर्व जन्म की, इस जन्म की, भूतकाल की, वर्तमान काल के और भविष्य में जो तुम पाप करेगा वो सब एक कृष्ण नाम के द्वारा ही सब समाप्त हो जाएगा। तुम वृंदावन जाना और वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थली में एक मंदिर है, मंदिर में वैष्णव लोग आएंगे, उनके चरणों की धूली को ग्रहण करते रहना सब समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बस तुमको और कोई शुद्धि की अब कोई भी जरूरत नहीं है, बस वो मुक्त हो गए और उनकी चरणों की धूली लेकर के कृष्ण कृष्ण कहते हुए वृंदावन में चले गए। और जो कया तो और इतिहास की बात, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के इस विषय को और जो आस्वादन किया और कृष्ण प्रेम जो दिया, भारत के इतिहास में या विश्व के किसी इतिहास में ये सब चीजें इतने सरल रूप में, सहज रूप में कृष्ण का जो ये दिया प्रेम और जगत में नाम का प्रचार किया, आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके परिकरों ने विश्व के कोने कोने में ऐसा कोई नगर ग्राम इत्यादि नहीं है जहाँ हरे कृष्ण मूवमेंट न हो और महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को न जानते हो। बल्कि हम लोग जितना नहीं जानते, यहाँ का रहने वाले हिंदू ब्राह्मण कहलाने वाले भी जो सदाचार संपन्न होकर के मांस मछली प्याज लहसुन गंदी बातें ये सब छोड़ करके गले में तुलसी की माला लेकर तिलक यहाँ लगाकर शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करके भजन हम नहीं कर पाते, कुछ दुर्बलताओं के कारण पश्चात देशों में जो कि ऐश्वर्य की उच्च से उच्च भूमि पर अवस्थित और वो सब लोग उन्हें तृण की भांति सबको छोड़ करके हाथ उठा करके स्त्री किशोर किशोरियां जिनको लज्जा आती है बहुत किशोरियों को, वो लोग भी सब कुछ छोड़ करके तिलक लगा करके गले में माला पहन करके और अपने वेशभूषा को छोड़ करके हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने को सब प्रकार से ढालकर और कैसा हरिनाम कर रहे हैं। एक चित्र हाँ वहां पर देखे कैसा चित्र वैसे सभी लोग। तो इस तरह से हम लोग जो नहीं करते वो लोग करते। तो ये रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के समस्त भावनाओं को और प्रेम किसे कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, महाप्रभु जी किस लिए आए हैं, वृंदावन क्या चीज है, गोपियां क्या वस्तु हैं, भगवत प्रेम भी किसको कहते हैं, कैसे वो ला किया जा सकता है, इन चीजों को चैतन्य महाप्रभु जी ने कृपा करके रूप गोस्वामी के हृदय में प्रस्फुट किया था और चैतन्य महाप्रभु के इन भावों को रूप गोस्वामी ने सरल सरल शब्दों में भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वल मणि विदग्ध माधव ललित माधव अलंकार इत्यादि समस्त पुस्तकों में गागर में सागर की तरफ में तरफ सब प्रेमों को भर दिया है। इतना सुंदर उनका ये उस रूप गोस्वामी के लिए एक कीर्तन है। मैं कीर्तन थोड़ा सा करके और फिर समय रहेगा तो कुछ नाम के संबंध में अजामिल उपाख्यान के संबंध में उन्होंने कहा उसमें बहुत सी विशेष बातें हैं उसके तरफ में हम दो चार शब्द हम मैं कहूंगा। अभी थोड़ा सा ये कीर्तन बंगला का है किंतु हम लोगों के लिए हृदय का ही है, प्राण स्वरूप ये कीर्तन है, केवल हमारे लिए नहीं हमारे संप्रदाय के जितने भी शुद्ध वैष्णव हैं वो सब करते हैं। तो आप लोग जो नहीं कर सकते हैं तो अभी सुनेंगे, जो करने वाले हैं वो लोग दोहरा सकते हैं। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं भक्ति वेदांत स्वामी जी हमको पुनः पुनः कहते थे ये आप ये कीर्तन जरा हमको सुनाइए, विशेष करके अंतिम समय में जबकि वो परलोक गमन कर रहे थे बिस्तरे पर थे, मैंने उनको बड़े प्रेम से ये कीर्तन सुनाया था। तो अब तो गला नहीं इसलिए मैं जैसे तैसे टूटे फूटे गले से भी मैं इसको गा रहा हूं। श्री रूप मंजरी पदा श्री मोर संपदा श्री रूप मंजरी पदा
मोरा प्राण
इसका थोड़े से भाव सारांश में ये है, नरोत्तम ठाकुर जी वैष्णव संप्रदाय के बड़े ही परम सिद्ध महात्मा थे। वो रूप गोस्वामी के लिए, रूपमंजरी के लिए कह रहे हैं, और रूप गोस्वामी जी के जो चरण कमल है, रूपमंजरी के जो चरण कमल है, उनकी पदधूली ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, वही मेरे लिए पूज्य है, वही मेरे लिए आराध्य है, यहाँ तक कि प्राणों का प्राण, जीवों का भी जीवन और जीवन का भी मूल चीज वो रूप गोस्वामी के चरण की धूली है, वही मेरे लिए रसनिधि है, और वही मेरे लिए वांछा है कि यदि मर मर करके कहीं हूं, कहीं भी मेरा जन्म हो, तो रूप मंजरी के चरण कमलों की धूली का मैं सेवन कर सकूं, ऐसा मुझे चाहिए। मैं तृण लता गुल्म भी हूं, तो भी रूप गोस्वामी के, रूप मंजरी के चरण कमलों की मैं आराधना कर सकूं, हमारे जीवन की वांछा, हमारे जीवन की सिद्धि, हमारा सर्वस्व जो कुछ है रूप गोस्वामी। क्यों? इसलिए कृष्ण की, राधा जी की बड़ी प्यारी है ये, जितनी सखियां हैं उन सब में ये राधा जी की विशेष प्यारी है। ललिता विशाखा से उनको किसी विषय में लज्जा हो सकती है, किंतु इनसे कोई भी लज्जा की बात नहीं होती है। इसलिए मेरा व्रत, मेरा तप, मेरा मंत्र जप, मेरा सर्वस्व, धर्म कर्म जो कुछ है रूप गोस्वामी की चरण की धूली है। यदि विधाता हमारे अनुकूल हो, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो बस यही हमको यही वरदान दें कि रूप गोस्वामी की चरण धूली सेवा करने का मुझे सुजोग मिल सके। बस विधाता से यही मेरी एक प्रार्थना है, मैं उनके श्री चरण कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ। और रूप गोस्वामी, आपके दर्शन के बिना मैं मर रहा हूं, मैं छटपट कर रहा हूं, जैसे किसी को सांप काट ले, वही तुम्हारा अदर्शन, अतः तुम्हारा नहीं दर्शन नहीं होना, ये मेरे लिए सांप के समान है, मुझे वो विषधर सांप काट रहा है, मैं जीवित नहीं रह पाता, इसलिए जल्दी से मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अभी मरा, अभी मरा। हा हा प्रभु कर दया, हे रूप गोस्वामी हमारे ऊपर में आप दया की, कृपा की वर्षा दीजिए, नहीं वर्षा हो, एक कहीं कण भी यदि उसका लग जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, ये वो कीर्तन करते हैं। अब थोड़ा सा एक दो मिनट का कीर्तन करके तब मैं अपना वक्तव्य। राधे 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 जय 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 श्री राधे, सभी बोलिए।